ओम शांति। मैं पहले आपको दो बातें सुनाऊंगा दादी जी के बारे में, न केवल सुनेंगे बल्कि महान आत्माओं के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। केवल उनकी प्रेरक कहानियां नहीं हैं, हम सब के लिए बहुत सुंदर टीचिंग हैं, शिक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत माताएं दादी जी के जाने के बाद ज्ञान में आई होंगी, 12 साल हुए हैं। 3 दिन दादी को वतन में रखकर ही बाबा ने नीचे भेज दिया था पुनर्जन्म लड़के के रूप में, और कहा था कि जैसे ही ये 2.5-3 साल का होगा तो अपने बाप को अच्छी अच्छी सलाह देने लगेगा उसके कार्यों में, इसलिए जल्दी ही बुद्धिमान बच्चे के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा बाबा को राज्य स्थापना में बड़ा काम कराना है। राज्य स्थापना सतयुग से पहले एक और होनी है भारत में। श्री कृष्ण के फादर भारत के अंतिम सम्राट होंगे, जिनके घर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो वो राजकुमार कहलाएंगे। ये राज्य स्थापना करने का काम जो अव्यक्त मुरली में हम सुन रहे थे, कुछ गहरी बातें बहन जी ने एक्सप्लेन तो नहीं की, एक्सप्लेन करने का समय भी नहीं था। दीदी मनमोहिनी बहुत सुंदर प्लानिंग बुद्धि, मामा वो तो सबसे महान उमंग उत्साह में रहने वाले दादा विश्व किशोर और बहुत सारी आत्माएं ये भारत में अंत में राज्य स्थापित करेंगे, जिससे ये राज देवताओं को ट्रांसफर हो जाएगा। अब तो राज नहीं है ना, प्रजातंत्र है, राज्य स्थापित हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज की मुरली में थी, बहुतों को समझ में नहीं आई होगी, दादी से जुड़ी हुई बात है वो, कि आज का दिन शक्तियों को शक्ति अर्पित करने का दिन है, बाप समान बनने के वरदान देने का दिन है, समर्थी भरने का दिन है। वो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, आपने से कुछ लोगों ने सुनी होगी, अधिकतर माताओं ने नहीं सुनी है। दादी अपनी ये कहानी बहुत साल तक सुनाती रही थी बाबा जब अव्यक्त हुए, क्योंकि ये बिल्कुल प्राइवेट बात थी और इन दिनों टीवी आदि ये सब नहीं होते थे, माइक भी नहीं थे। आजकल जो विज्ञान के साधन है इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब नहीं थे, तो दादी हर साल वो अनुभव सुनाया करती थी। मैं आपके समक्ष वो अनुभव रख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। बाबा की तबीयत 17 तारीख को भी अच्छी नहीं थी, 16 जनवरी 17 18 तीनों दिन बाबा की तबीयत ढीली थी। तो यज्ञ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 18 जनवरी सवेरे क्लास में बाबा नहीं आए, एक दिन मिस केवल बाबा के जीवन में। बाबा को छाती में दर्द था थोड़ा, बाबा के नशे की बात सुन लें तो जो भाई यहाँ थे विश्वरतन दादा थे और भाई थे, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आपको तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाएं। बाबा का उत्तर, बच्चे बाप तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा। क्योंकि बाबा को डीप फीलिंग थी कि आज का दिन इस साकार धरा पर मेरा अंतिम दिन है, इसलिए रात को 8 बजे बाबा ने कहा कि आज बाबा सवेरे क्लास में नहीं आए, बच्चे चिंता करते होंगे, जल्दी से क्लास शुरू करो। वैसे रात्रि क्लास 9 बजे शुरू होती थी, 8 बजे घंटी बजी, उन दिनों घंटी बजाया करते थे हम लोग, ठन 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 किया, सब क्लास में आ गए, अनाउंसमेंट के साधन नहीं थे। 8:15 बजे बाबा मुरली सुनाने आ गए। वो 18 जनवरी रात्रि क्लास आपने सुना होगा, जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो, जिसमें बाबा ने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी, अपना टाइम वेस्ट न करो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, बहुत अच्छी अच्छी आधे घंटे की शिक्षाओं से भरी मुरली थी। और लास्ट में जब बाबा क्लास से जाने लगे तो गेट पर खड़े हुए, प्राय ऐसा नहीं होता था, हिस्ट्री ऑल सभी ने देखा है, गेट पर खड़े हुए, राइट साइड का गेट, उधर से बाबा आते थे, शांति स्तंभ लेफ्ट साइड, राइट साइड का गेट, बाबा खड़े हुए, सबको दृष्टि दी और एक महावाक्य उच्चारण किया, अच्छा बच्चों से विदाई। ये सिग्नल था, लेकिन कोई क्या समझे, बाबा वापिस अपने कमरे में आ गए, और क्योंकि बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी तो दादी और एक दो और दादियां बाबा के साथ आई। बाबा आकर अपने पलंग पर बैठ गए, ऊपर पैर करके बैठ गए, दादी को इशारे से बुलाया, दादी भी साथ में बैठी और दादी के हाथ में अपना हाथ दिया और दृष्टि देने लगे। और 1 मिनट दृष्टि देते देते उड़ गए, दादी का हाथ, बाबा का हाथ ढीला पड़ गया, दादी देखने लगी क्या हुआ, वो तो पता चल ही जाता है सबको, फटाफट जो बहनें दो और थी उन्होंने सबको बुलाया, सबने देखा बाबा तो चले गए हैं। तो ये वो सीन था, बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में देकर यज्ञ का संचालन करने की शक्तियां उन्हें दे दी थी। ये कहा बाबा ने आज, शक्तियां अर्पित की, बाप समान बनने का वरदान दिया, अपने को गुप्त करके शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का क्षण था वो, ये मुरली में शुरू में था ना, ये उनका अर्थ है। छोटी सी कहानी और सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं दादी की महानताओं की तरफ। तो दादी जनवरी में, दादी मुंबई गाम देवी में रहती थी, और जनवरी में ग्रुप लेकर बाबा को मिलाने के लिए लाई थी। बाबा ने दादी को कहा, दीदी मनमोहिनी जिनकी चर्चा थी उनको बाबा ने भेज दिया था, कुंभ मेला इलाहाबाद में था, वहां सेवा के लिए जाओ। दादी को कहा बच्ची आप रुक जाओ, और 5-6 दिन पहले दादी रुक गई थी, और बाबा ने दादी को यज्ञ का सारा कार्य समझाया, एक एक डिपार्टमेंट में चक्र लगवाया कि ये बाबा का किचन है, यहाँ स्टोर रहता है, यहाँ आटा पिसता है, ये संभालते हैं, और ये कारपेंट्री है, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। जैसे अब डिपार्टमेंट है, तब थोड़े कम थे, कम भाई बहने थे, वो सब दादी को एक्सप्लेन करके एक्सपर्ट कर दिया था। तो बाबा के देह छोड़ने के बाद दादी को ऐसा नहीं लगा था कि वो कुछ जानती नहीं है यज्ञ के बारे में। बाबा ने शरीर छोड़ा, थोड़ी देर में सबको क्लियर हो गया कि बाबा गए हैं। दादी ने सभी को फोन करने प्रारंभ किए। ये भी बड़ा पावरफुल अनुभव था। उन दिनों फोन ये नहीं थे जो आज हैं, ट्रंकॉल कहते थे। यहाँ से अगर दिल्ली फोन करना है तो यहाँ से जयपुर जाएगा, पहले यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा, फिर जयपुर, जयपुर से दिल्ली। अगर कट गया तो फिर यही प्रक्रिया होगी, बहुत समय जाता था। दादी ने सबसे पहले दिल्ली फोन किया, बताया, अब किसको विश्वास न हो, मुंबई बताया, लखनऊ बताया, जहां बड़ी बड़ी दादियां रहती थी, किसी को विश्वास न हो। जगदीश भाई थे दिल्ली में, उनको बताया, वो भी चार पांच दिन पहले ही होके गए थे मधुबन से, और उनको आभास हो गया था। जगदीश भाई की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ, बहुत तीव्र गति वाली थी, उनको आभास हो गया था। उन्होंने सबको कहा था कि मुझे लगता है बाबा अब ज्यादा समय नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया था। तो बाबा व्यक्त हुए, दादी ने कार्य संभाला, मैं सबसे ही साथ हूं। मैंने दादी को समीपता से भी देखा है, क्योंकि हमारे पास किचन में रोज दादी कई कई बार आती थी। किचन और दादी का रूम पास पास दरवाजे ही थे, नेक्स्ट डोर दादी का रूम था। और दादी कितनी निरहंकारी थी, दादी जिस कमरे में रहती थी वो कमरा नहीं, एक बड़ा सा हॉल था जिसमें आठ बहनें रहती थी। आठ बहनों के बीच एक दादी की बेड भी थी, अलग कुछ नहीं था, क्योंकि यज्ञ छोटा था, वहां जगह बहुत कम थी। पीछे दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी एक बार सन 71 में, तो दादी के लिए एक अलग छोटे रूम का इंतजाम किया गया। दादी पहले से ही, जन्म से ही पवित्रता की देवी थी। ये दादी स्वयं भी सुनाती थी कि दादी की बुद्धि किसी देहधारी की ओर गई नहीं, संसार के आकर्षणों में गई नहीं। दादी के लौकिक पिता ज्योतिषी थे, उन्होंने पहले से बताया हुआ था इनकी माँ को कि ये तो मीरा बनेगी। तो जब ये समर्पित हुई तो वहां किसी को कोई ऐतराज नहीं था, और दादी की और बहनें भी समर्पित हुई थी, तो लगभग पूरा परिवार ही समर्पित हो गया था। और दादी पहले से ही, जैसे ही यज्ञ में आई 36 में, सन 36 में, तो बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत मधुरभाषी, बहुत नम्रचित, ज्ञान में बहुत रुचि रखने वाली, योग की बहुत शौकीन, सबसे मिलनसार, संतुष्ट आत्मा थी। ये सब क्वालिटीज हमने दादी में देखी। दादी मुरली सुनाया करती थी, हम लोग याद करते हैं। मैंने तो पूरा जीवन उनसे मुरली सुनी। मुरली में रस भरना अगर किसी को सीखना हो तो दादी से सीखो। अगर नशे की मुरली है तो सारी सभा को नशे में ले चलती थी, इसी ढंग से पढ़ती थी, ऐसा ही लगता था जैसे बाबा स्वयं बोल रहा हो। मुरली का बहुत आनंद हम सब ने लिया। दादी के मुख से जब ईश्वरीय महावाक्य सुने तो देखिए ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। मुरली तो सभी सुनाते हैं, मुरली तो पढ़नी होती है, बाबा के महावाक्य लिखे होते हैं, लेकिन उन महावाक्यों के साथ मुख से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो उस आत्मा की अपनी क्वालिटीज होती हैं। दादी में ये क्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, पवित्रता की वो देवी थी। मैं एक अनुभव उनका इस बड़ी सभा में कई बार सुनाया है, क्योंकि मैं यहाँ 12 साल से बैठता हूँ। इस समय जब प्रकाश स्तंभ पर सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो एक साथ तो सब जा नहीं सकते, भीड़ हो जाएगी, मौका भी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे आप जाएंगे, आपको टाइम मिलेगा। एक सुंदर अनुभव, दादी जी को सन्यासियों की सेवा की बहुत रुचि थी। कम से कम 5 बड़े सम्मेलन ओम शांति भवन में सन्यासियों के लिए आयोजित किए गए। एक सम्मेलन में बनारस की सारी विद्वत मंडली आई थी, जो विद्वान हैं वहां के प्रोफेसर्स हैं संस्कृत के, जो वेद शास्त्र दर्शन पढ़ाते हैं वो सब आए। एक सम्मेलन में बहुत सारे सन्यासी और एक सम्मेलन जिसकी चर्चा मैं अब कर रहा हूं, कई महामंडलेश्वर आए थे और 2 शंकराचार्य। बहुत सुंदर हुआ, दादी खुद इन सन्यासियों को पांडव भवन घुमा रही थी। तो जब मेडिटेशन हॉल जा रही थी, आपने देखा ये मेडिटेशन हॉल ऊपर को जरा सा सीढ़ी चढ़ के 10 सीढ़ियां, तो एक बुजुर्ग से सन्यासी ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी ने सोचा बुजुर्ग है, सहारा चाहता होगा। दादी ने भी पकड़ा और सीढ़ी चढ़ के सारा कुछ दिखाया। जब सारे सन्यासी वापिस आए पांडव भवन देख कर, तो दादी का जो सिटिंग मीटिंग रूम है जिसमें कभी मामा रहती थी उसमें सब बैठे। बड़ा रूम है वो भी, हॉल जैसा ही है। तो उस सन्यासी ने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है। क्या? तो आज मैंने यहां चलते हुए दादी जी का हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ते ही मुझे इतने पवित्र वाइब्रेशंस आए कि मेरा सारा शरीर पवित्र तरंगों से जैसे भर गया। तो दादी में इतनी पवित्रता है, दादी ने सुना था, उनको क्या पता था इस बात का कि ये पवित्र आत्मा जिस संस्था की हेड है वो संस्था निश्चित रूप से इस संसार का कल्याण करेगी। वो महामंडलेश्वर थे। दादी जी सचमुच ऐसी पवित्रता की देवी थी। एक बहुत बड़ी खूबी, मैं पर्सनल बात सुनाता हूं, हमारे किचन में बहुत आती थी। पहले तो मैंने कहा पास ही रूम था, 5 बार रोज आ जाती थी, क्योंकि हमसे कुछ खाना बनाना आता नहीं था। चाय बनानी भी दादी ने सिखाई, हमसे तो न चाय पीनी आती थी न बनानी आती थी। पी भी तो पहली बार दूध की तरह घूंट भर लिया, सब जल गया। लोगों ने कहा चाय ऐसे नहीं पी जाती। दादी ने सब सिखाया। हम लोग तो छोटे कुमार अपने बिस्तर भी ठीक करना नहीं जानते थे। जब हम सब नीचे सेवाओं में होते थे तो यीशु दादी को लेकर हमारे कमरों में चली जाती थी और सबको बुलाती थी, देखो तुम्हारे बिस्तर कैसे हैं, कंबल वैसे ही पड़ा है, चादर वैसे ही पड़ी है। सिखाया हमें ऐसे तह करके जाओ, हम बड़े खुश होते थे। दादी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी, अगर दादी हमारे पास आ गई है तो कोई डरता नहीं था। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी क्वालिटी होती है। कोई बड़ा आदमी आ जाए लोग डरेंगे कि पता नहीं क्या कहेगी दादी, डांटेगी क्या, कुछ करेक्शन देगी क्या। बिल्कुल नहीं, दादी का कहीं भी जाना माना, खुशियों से वो जगह भर जाना। तो किचन में तो ये मौका हमें बहुत मिलता था, दादी सब कुछ सिखाती भी थी और जब हम कुछ गलती करते थे तो डांटती नहीं थी, बहुत प्यार से कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे बनाई जाती है, आग इसमें धीमी की जाती है, इसमें तेज आग नहीं जलाई जाती, लकड़ियों पे खाना बनता था ना। ये छोटी छोटी चीजें भी दादी ने हमें सिखाई। तो मैं देखता था सिखाने की कला। सभी माताओं को मैं दादी की ये बात कहूंगा, सिखाने की कला। आपके घर में भी नई नई आत्माएं आती हैं, आपके बच्चों की शादियां होती हैं, नई आत्माएं आपके घर आएंगी, वो एक्सपर्ट नहीं हैं, वो पढ़ लिख के आई हैं। आजकल लड़कियां पढ़ती हैं, घर के काम कम सीखती हैं। आपको उन्हें सिखाना है, डांट डपट से नहीं, बहुत प्यार से, तो आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। दादी जी की ये विशेषता जहां जाए माहौल हल्का कर देती थी। हमने कितनी गलती की होंगी किचन में, अच्छी अच्छी गलती, कभी कुछ जला दिया, कभी कुछ टूट गया। दादी कितने प्यार से हमें कहती थी, शिक्षा नहीं, बहुत प्यार से कहती थी कुछ बात। उसका असर जीवन पर बहुत गहरा पड़ता था। एक बात में मुझे जो दादी की बहुत अट्रैक्ट करती थी, दो बातें सुनाऊंगा, एक यहाँ की एक पांडव भवन की। दादी मुरली सुनाने आ गई, बीच में कुछ भोजन की बात आ गई, ब्रह्मा भोजन की बात तो आती रहती है मुरलियों में, सभा 20,000 की बैठी है। दादी पूछ रही है सबसे, बोलो क्या खाओगे आज, क्या खाओगे, आइसक्रीम खाओगे? 20,000 लोग हैं, मेरे आसपास कई बुद्धिमान प्रोफेसर आदि बैठे थे, कहने लगे दादी ये मनुष्य है या देवता है, 20,000 से पूछ रही है, बोलो क्या खाओगे, जो तुम खाओगे वही दादी खिलाएगी। का वंडरफुल बात है, हम सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि जो हम कहेंगे वही खिलाया जाएगा, पर दादी का सागर समान दिल, कितनी बड़ी बात है। बहुत खुश हो गए लोग, मेरे को बताने लगे कई मेरे फ्रेंड, उनमें से किचन में आने जाने वाले, मतलब ये बात सुन के सभी दादी जी के प्यार में भी जैसे भाव विभोर हो गए, जैसे उन पर न्योछावर हो गए कि ऐसी दादी सबको मिले। दूसरी बात मैं कह रहा था, है ना, आप माताएं भी घर में नहीं पूछ सकती, मेहमान आ गए चार तो उनसे पूछो क्या खाओगे, कहेंगे पता नहीं कुछ और कह दे तो मुश्किल ना हो जाए, लेकिन दादी का विशाल दिल ऐसा ही था। पांडव भवन में जब तक यज्ञ छोटा था, जब ज्ञान सरोवर बना और शांतिवन बना तो विशाल हो गए, आप सब देख रहे हैं, पर जब अकेला पांडव भवन था, हम पांडव भवन में अधिक से अधिक 100-125 भाई बहने रहते थे, इससे ज्यादा नहीं, तब तक दादी, हमेशा एक चीज हमने दादी की देखी और ये बात सभी को सीखने की है, सबको संतुष्ट करने का भाव। दादी कहती थी, जैसे आज दीदी कह रही थी ना, संतोष दीदी, मैं शब्द यूज नहीं करती थी, तो कहती थी दादी चाहती है कि यज्ञ में बाबा का हर बच्चा संतुष्ट रहे, ये मेरा परिवार है, दादी का परिवार है, परिवार में कोई भी असंतुष्ट न रहे, कि जिसको जो चाहिए वो मिले। तो सबको कागज दे दिए जाते थे, चिटकी, किसी को कुछ भी चाहिए लिख दो और अगले दिन वो सब मिल जाता था। मुझे याद है तब यज्ञ छोटा था और साधारण था, यज्ञ में बहुत पैसा नहीं था, फिर भी किसी किसी को पैसा तो चाहता है ना, भाई कहीं दवाई की जरूरत पड़ गई तो देने वाले अकाउंट वाले पूछेंगे क्यों ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। दादी के सामने बात आई, देखो दादी का विशाल दिल, दादी ने क्लास में सभी को अनाउंस कर दिया, अकाउंट वाले बैठे थे, कि 500 रुपए तक कोई भी मांगे, उन दिनों की बात है, आज से 30-35 साल पहले की बात, उन दिनों 500 रुपए अब के 5,000 के बराबर हो गए, कोई 500 रुपए तक मांगे किसी से पूछना नहीं क्या करोगे, दे देना है। ये देखिए प्रशासन की बहुत सुंदर कला। अब जब दादी नहीं है, मैं ये कहने में कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, मैं केवल कहूंगा, बाकी सब चुपचाप बोलते हैं, कि दादी की मिसिंग महसूस होती है अच्छी तरह, कि यहाँ दादी होती तो ये काम ऐसे फटाफट हो जाते हैं, हो जाते थे, अब हो जाएंगे। तो दादी बहुत एक्टिव, ये नहीं मैं चीफ हूँ बस बैठी हूँ सब काम लोग कर लेंगे, एक एक डिपार्टमेंट पे ध्यान देना, एक एक से पूछना, उनकी समस्याएं हल करना, उनको जो चाहिए देना, उनकी छुपी हुई योग्यताओं को जागृत करना, ये दादी के प्रशासन की बहुत सुंदर कला थी। समझ गए ना मैंने क्या कहा? आपको भी अपने घरों का प्रशासन करना है, एक एक को उमंग दिलाना। मान लो हम किचन में हैं, तो हमसे पूछती थी भाई ज्यादा काम तो नहीं है और चाहिए क्या साथी, ये चीजें ठीक मिल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हर चीज की केयर करना। देखिए इतने बड़े यज्ञ में ये कोई सहज काम नहीं होता। एक काम और करती थी दादी, ये बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी और मैंने भी कभी नहीं सुनाई, तो जब हमारे यहाँ बरसात का सीजन आ जाता था, ये देखिए छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की हैं, जिनको प्रशासन करना है, जो सेंटर पर बहने रहती हैं उनके लिए भी ये बहुत काम की बात है। तो जैसे ही बरसात का सीजन आता था तो बाहर के ग्रुप नहीं आते थे, आजकल की बात अलग है, हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है और पूरे साल यहाँ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन उन दिनों जैसे ही बरसात शुरू हो गई तो कोई ग्रुप नहीं आएगा, पार्टी नहीं आएगी। तो एक प्लान बनाती थी दादी कि हर डिपार्टमेंट के भाई बहनों के साथ रोज दिन में भोजन करेंगी। मान लो हम किचन में 25 लोग हैं तो 25 लोगों के साथ भोजन खाएगी, सबसे बात करेगी, टोली खिलाएगी, हाल चाल पूछेगी। कारपेंट्री डिपार्टमेंट होता है, कारपेंट्री में 10 लोग हैं, 10 को बुलाएगी, उनके साथ ब्रह्मा भोजन खाएगी। सबको अपनापन देना, सिक्योरिटी वाले ऐसे लोग जिन्हें कोई कभी पूछता नहीं, जो दादी से कभी मिलते नहीं थे, उन सबको बुलाना, साथ में भोजन खाना, कुछ देना, कुछ बातचीत करना, उन्हें अपनापन देना, प्यार देना। ये प्यार की पालना अगर सीखनी हो तो वो दादी से सीखी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनके अंदर। डांटना डपटना ये तो मिनिमम था, प्यार से सब कुछ सिखा देना। अब मैं दादी की बड़ी क्वालिटीज पर आ जाता हूं, जिनकी स्वयं भगवान ने महिमा की है। स्वयं भगवान ने जब दादी थी तब भी की और जब दादी ने देह छोड़ा तब भी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वालों की सबसे सुंदर धारणा है। और वो है दादी में निमित्त भाव, दादी बहुत निर्माणचित और निर्मल थी, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। मैं इस बात के बारे में आपको कुछ कहूंगा, ज्ञान की गहरी बातें, निस्वार्थ भावना बहुत बड़ी चीज है। इस संसार में कई लोग ऐसा करते हैं कि वो काम करते हैं जहां उनका स्वार्थ पूरा होता हो। माताओं की बात सुना दूं, अगर बुरा ना मानो सुना दूं, देखो बुरा नहीं मानना, कई माताएं इसलिए यज्ञ सेवा करती हैं कि बहनें उनकी प्रशंसा करें, भाई वो आगे आ जाएं, सबको पहचान हो जाए। ये माताओं की बात नहीं, ये भोतों की होती है, मैंने तो केवल आपका नाम लिया, नहीं इसमें ताली बजाने की बात नहीं। ये जो स्वार्थ है, यही मैपन है, ये मनुष्य की सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। हम सेवा करें निस्वार्थ भाव से, करें और बाबा को अर्पित कर दें। ये बहुत सुंदर विधि है इस जीवन को महान बनाने की, इस जीवन को अलौकिक बनाने की, बाबा की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करने की। देखो मैं अपनी बात भी एक बता दूं, है मेरी प्राइवेट पर मेरे मुख पर आई है, वो आपे ही होने लगा मुझे, 2-3 साल से आपे ही होता है। कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए, बट्टियों में जाते हैं, पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत सब भाई बहने खुश होते हैं, हमारी बहुत महिमा करते हैं, मेरे पर महिमा के फूल ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। मैं क्या करता हूं, सम्मान समारोह भी करते हैं, ताज पहनाएंगे, मालाएं डालेंगे, महिमा करेंगे, मुझे आदत हो गई है। यही आदत हमने दादी में देखी थी, साथ साथ सब कुछ ऊपर तुमको अर्पित। तो एक बहुत अच्छा अनुभव मैं करने लगा, ये तो मैं बहुत साल से करता आया हूं, 20 साल से, पर एक बहुत अच्छी बात, जैसे ही किसी स्थान से वापस चलते हैं, बाबा के रूम में जाते ही हैं, एक ऑटोमेटिक संकल्प आने लगा कि बाबा यहां जो सेवा हुई उसका जो पुण्य हुआ वो पुण्य भी तुमको अर्पित। एक अलौकिक फीलिंग होने लगी, मैं तो बल्कि बाबा को कहता हूं मैंने तो क्या किया, कराने की शक्ति भी तुमने दी, विवेक भी तुमने दिया, ज्ञान भी तुमने दिया, अब इस पुण्य को संसार के कल्याण में लगा दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। दादी में ये बहुत बड़ी विशेषता थी, निमित्त भाव। देखिए इतने बड़े यज्ञ का संचालन करने में कठिनाई तो आती है ना, या हम सोचेंगे कोई कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई आती है। इतनी बहने समर्पित, 16,000 के लगभग हैं, तब भी 12,000-13,000 थी, उन सब के जीवन की जिम्मेदारी, जीवन में उतार चढ़ाव वो सब दादी के पास आते थे। दादी की एक खूबी बता देता हूं जिसके कारण टीचर बहने दादी को बहुत याद करती हैं। जब कन्याओं की भर्ती होती थी, अब भी होती है, तो कन्याओं को लास्ट में विदाई देते हुए दादी बड़े अपनेपन से कहती थी, तुम हमारी बच्चियां हो, कोई भी समस्या आ जाए जीवन में, कोई तुम्हें पूछे नहीं, कोई साथ न दे, दादी के पास भाग आना, मैं हूं। कितना बड़ा सहारा हो गया, छोटी बात नहीं कही थी ये, हर बार कहती थी ये छोटी बात नहीं, छोटी बहनें जो अभी जीवन को आगे बढ़ाने वाली हैं, कोई 18 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई 22 साल की है, जिन्हें भविष्य के बारे में थोड़ी अनिश्चितता भी रहती है, डर भी रहता है कल कुछ हो न जाए, दादी देखो कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास जगा देती थी कि तुम कुछ भी सोचना नहीं, मैं हूं ना, आ जाना दादी के पास। तो ये बहुत बड़ी महानताएं दादी के जीवन में थी। अब टाइम तो 8:45 होता जा रहा है, अब सबके पेट में भी चूहे कूद रहे होंगे, नहीं कूद रहे, चूहों को विदाई दे दी आज, ज्यादा नहीं थोड़ी सी बातें और सुना देता हूं। दादी बहुत निरहंकारी और नम्र चित्त थी, कभी भी अहंकार उनके बोल में, उनके चलने में, उनके व्यवहार में, बैठने में, हम सब मिलने जाते थे उसमें, दादी के जीवन में कभी नहीं देखा। शुरू की बात बताऊं, क्योंकि हम किचन में थे, दादी 8 से 10 बजे सवेरे मुरली के बाद पत्र लिखती थी सब जगह, नाश्ता बाद में करती थी, हमें कभी कुछ काम होता था बीच में चले जाते थे, मान लो 9 बजे चले गए तो दादी ये नहीं कहेगी मैं पत्र लिख रही हूं क्यों आए, मनुष्य कह सकता है ना भाई मेरा पत्र लिखने का टाइम है, उस पर एकाग्रता रहती है, अब क्यों आ गए बीच में, कभी नहीं, आओ सूर्ये काम है कुछ दादी से, और 1 मिनट में बताया और फिर पत्र लिखने लगी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये छोटी बात नहीं है। कई लोग ऐसे होंगे बीच में आप चले जाएं डांटना शुरू कर देंगे, दिखता नहीं है मैं लिख रही हूं, अकल नहीं है तुम्हें, इतने भी मेहनत नहीं सीखे, दादी में ये सब नहीं, बहुत अपनापन था। तो निरहंकारिता की भी देवी थी, नम्रता उनके जीवन का श्रृंगार था, जैसे उनके लिए कवच था। हम सबको बाबा से मिलाने के लिए भी बहुत इच्छा हम सब का ध्यान रखती थी। कई बार अव्यक्त बाप दादा को उन्होंने पर्सनली मधुबन निवासियों के लिए बुलाया। ऐसी घटना एक बार नहीं, कम से कम 25 बार हुई। जब यज्ञ छोटा था, शांतिवन बना, उसके बाद तो ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद भी 2-3 बार संभव हुआ, जब बाबा को पांडव भवन में बुलाया। तो बहुत केयरफुल थी। तबीयत किसी की खराब हुई जब यज्ञ छोटा था, तब की बात बता रहा हूं, 85 से पहले पहले, जहां की आज मुरली सुनी उससे पहले पहले, किसी की तबीयत खराब हुई उसके पास एक बार तो जरूर दादी उसके कमरे में जाती थी हालचाल पूछने। मेरे को तेज बुखार हुआ, दादी बहुत बिजी थी, बहुत तेज बुखार हुआ था 107 तक। दादी को पता चला, दादी ने तुरंत मुन्नी बहन और मोहिनी बहन को भेजा, जाके कमरे में देखो सब कुछ ठीक ठाक तो है। बहुत केयरिंग नेचर, ये सब बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं। निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल। निर्मल ये शब्द भी बहुत निर्मल है, निर्मल शब्द ही निर्मल है। मन में किसी के लिए कोई वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष नहीं। तो कहती थी दादी, हम लोग जब पर्सनल क्लास होती थी ना मधुबन वालों की, तो दादी से क्वेश्चन आंसर किया करते थे, और उसमें मैं ही ज्यादा करता था। दादी कहती थी, पूछो दादी से कुछ। मैंने पूछा, दादी जी आपके ऊपर बड़ा कारोबार है, आपको चिंताएं भी होती होंगी, रात को जल्दी नींद आ जाती है? दादी का उत्तर कि मैं तो बिस्तर पे जाती हूं, तकिए पे सिर रखा और गई। बहुत बड़ी चीज हो गई, ऐसा निश्चिंत जीवन था, ऐसा बाबा पर विश्वास था कि सारा दिन जो कुछ हुआ है तुमको अर्पित, अब तुम संभाल लो, और साथ में हमेशा मुरली पढ़ के सोना, सवेरे उठकर योग के बाद फिर मुरली पढ़ना, मुरली सुनाने से पहले 2 बार मुरली की स्टडी करके फिर दादी मुरली सुनाने आती थी। इसलिए मुख्य बात दादी को बहुत ध्यान में रहती थी, उनको दादी अंडरलाइन किया करती थी। तो बहुत निर्मल थी। एक प्राइवेट बात बता देता हूं, बता दूं प्राइवेट भी, प्राइवेट माना मेरी नहीं, यज्ञ की। हम सबको यज्ञ से साल में एक बार कपड़े मिलते हैं, पूरे कपड़ों की लिस्ट सबको, भाई 6-6 जोड़ी मिलेंगे, जिसको ज्यादा चाहिए वो भी लिख देते हैं, गरम कपड़े, बिस्तर, रजाई, गद्दे, सब सबकी तैयारी होती है साल में एक बार। अब गद्दे बिस्तर तो हर साल कोई लेता नहीं। कोई व्यक्ति दादी से नाराज हो गया, अब वो दादी को देख नहीं रहा है, दादी आंगन में बैठी है, देखा है ना बाबा का रूम, उसके आगे आंगन, दादी अपने ऑफिस के आगे आंगन में बैठी है, वो किनारे से जा रहा है, देखता नहीं है दादी की ओर। एक बार गया, हम भी वहां हैं, हम देख रहे हैं, सबको पता है ये नाराज हुआ है, दादी की ओर देख नहीं रहा है, टेढ़ा मुंह करके निकल रहा है। दूसरी बार गया, दादी प्यार से बुलाती है, नाम से, हाँ ओम शांति, आओ, दादी से नाराज हो? अरे दादी से क्यों नाराज हो गए, आओ। वो फिर नहीं आता है, मुंह धर करके निकल जाता है, फिर दादी मुस्कुराती है। तीसरी बार फिर आता है, फिर बुलाती है, आखिर उसको आना पड़ता है, दादी हो गई ना पूर्वज दादी। बच्चे रूस भी जाएं तो माँ और दादियां मनाती हैं ना, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी, ऐसी नम्रता। नहीं तो ये भी सोच सकती है, रूस गया जाओ, मुझे क्या लेना तुमसे, जब जरूरत पड़ेगी कपड़ों की फिर आएगा लेने, ये नहीं। यज्ञ में सब संतुष्ट हों, बहुत प्यार का माहौल दादी ने यज्ञ में बनाया था, बहुत अपनेपन का माहौल बनाया था, सबको यज्ञ में रहने की इच्छा होती थी, इसलिए उनके प्रशासन काल में यज्ञ में हजारों भाई बहने तो यहाँ समर्पित हुए, और टीचर्स बहने तो मैंने कही 15 से 16 हजार समर्पित हुई। तो इतना बड़ा विशाल बाबा का यज्ञ जिसमें 16-17 हजार भाई बहने समर्पित रूप से पवित्र जीवन जीते हुए, निर्मल जीवन जीते हुए इस महान कार्य को सफल कर रहे हैं। आप सब भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब योग करेंगे, योग के बाद ही उठेंगे। ओम शांति। योग करके उठेंगे माताएं, बैठ जाओ।
कहते थे दा